हम लोग परमेश्वर के वचन को सही तरीके से कैसे उसकी व्याख्या करते हैं. हम लोग परमेश्वर के वचन को कैसे स्पष्टता से प्रचार करते हैं. कुछ आधारभूत सिद्धांत जिनको हमें समझना ही पड़ेगा. और एक सिद्धांत ये है,
represent timeless biblical principles.
कभी कभी सांस्कृतिक वहाँ के सामाजिक जो घटनाएं हैं वो प्रदर्शित करती हैं, प्रकट करती हैं समय से ना बंधे हुए सिद्धांतों के लिए जो सारे विश्वासियों पे हमेशा लागू होते हैं.
We've been looking at several examples.
हम कई उदाहरणों को देख रहे हैं इनमें से.
Now we come to one that is a bit more sensitive and complicated.
और अब हम एक ऐसे सिद्धांत ऐसे बात के बारे में बात करें जो हल्का सा और संवेदनशील है और थोड़ा जटिल भी है.
Look in 1 Corinthians chapter 11.
पहले कुरिन्थियों के 11 अध्याय में देखिए.
We want to answer this question.
हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं.
Women's head covering.
महिलाओं के सर ढकना.
Is that culturally conditioned or is that a timeless principle?
क्या ये सामाजिक संस्कृति के अनुसार है या असमय से बंद समय से सीमित नहीं है ये सिद्धांत?
How many of you say it is a timeless principle?
आप में से कितने लोग कहते हैं कि महिलाओं को सर ढकना ये हमेशा मसीह पे लागू होना चाहिए? कितने लोग कहते हैं? हाँ बताइए ईमानदारी से उठाइए, ईमानदारी से उठाइए, झूठ मत बोलिए, उठाइए उठाइए. केवल महिलाएं कह रही नहीं कह रही.
Does your wife wear a head covering to church?
क्या आपकी पत्नियां जब कलीसिया आती तो सर ढकती कि नहीं ढकती हैं?
If a woman doesn't wear a head covering to your church,
अगर आपके
if she does not,
अगर कोई महिला आपके कलीसिया में आती है और सर नहीं ढकती तो क्या करेंगे आप?
What do you do?
तो क्या करेंगे आप? We will tell her to cover her head. They won't come back next day.
Let's look at chapter 11.
Are you getting everything?
This is a bit more complicated, a bit more sensitive.
ये हल्का सा और जटिल है और हल्का सा और संवेदनशील है.
We don't want to spend too much time on this.
ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे इसके ऊपर हम.
But men smarter than I am have different opinions.
लेकिन कई आदमी लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और उनके अलग विचार हैं.
Did you hear that?
सुना आपने इस बात को? नहीं सुना इस बात को. अमेरिका में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी लोग इस प्रश्न के ऊपर उनके दूसरे विचार हैं, मुझसे फर्क विचार हैं.
So we need to be teachable and humble.
इसलिए हमको नम्र होना है और सीखने के तैयार होना है.
Now Paul is talking about the context of church gatherings.
और पौलुस यहाँ पे कलीसिया के संदर्भ में बातचीत कर रहा है.
Verse 17. I give this instruction, I do not praise you because you come together not for better or for worse.
मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि तुम बेहतरी के लिए. Which verse is it? 11?
Yeah, 17.
17. So 11-17. मैं निर्देश देता हूँ कि तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता क्योंकि तुम्हारे एकत्रित होने के विवाद में भलाई से बदले बुराई अधिक होती है.
Verse 5.
Pachapan.
Every woman who has her head uncovered while praying or prophesies, she disgraces her head.
जो स्त्री सिर उघाड़े प्रार्थना या नबूवत करती है अपने सर का अपमान करती है.
Now, is it permissible for a woman to pray publicly in church?
क्या एक महिला कलीसिया में सबके सामने प्रार्थना कर सकती है? नहीं कर सकती है.
Is it permissible for a woman to prophesy in the church?
क्या एक महिला के लिए अनुमति है कि वो कलीसिया के सामने खड़े होकर भविष्यवाणी कर सके, नबूवत कर सके?
What is prophecy?
लेकिन नबूवत है क्या? भविष्यवाणी है क्या?
Look in chapter 14.
14 अध्याय में देखिए.
Chapter 14, verse 3.
14 अध्याय 3 पद में देखिए.
What is prophecy in the church?
कलीसिया के भीतर भविष्यवाणी क्या है?
Verse 13, chapter 14, verse 3.
14 अध्याय उसका 3 पद में देखिए क्या है?
The one who prophesies does two things, three things.
जो भविष्यवाणी करता है वो तीन चीजें करता है.
It involves three things.
तीन बातें करता है.
He speaks to men.
वो आदमियों से बात करते हैं, तीन बातें कर रहे हैं.
He does it for three reasons.
तीन कारणों से कर रहा है.
To edify.
आत्मिक उन्नति के लिए.
Exhort.
उपदेश देने के लिए.
And to console.
और संतावना देने के लिए.
That's what it means to prophesy.
और ये है भविष्यवाणी करने मतलब.
As to prophesy, the New Testament though had two meanings.
लेकिन नए नियम में भविष्यवाणी करने का दो मतलब होते थे.
One meant a special ability to pronounce what would happen in the future.
भविष्यवाणी का मतलब एक ये है कि भविष्य में क्या होगा उसके बारे में बात की जा रही है, भविष्य के बारे में बात बताना.
But here he says the other ministry is to speak to men for their edification, consolation, and encouragement.
लेकिन यहाँ पे जो दूसरी सेवा
सेवा की बात हो रही है, वहां पे बात हो रही है लोगों से बातचीत करना, उनके आत्मिक उन्नति के लिए उपदेश देना, संतावना देना।
Paul says if men prophesy, they need to do it in a proper order.
और पॉल कह रहा है लेकिन अगर लोग जब भविष्यवाणी करेंगे तो कुछ सही तरीके से भविष्यवाणी करना चाहिए।
Back to chapter 11.
11 अध्याय वापस आएंगे।
Verse 5.
पांचवें पद में।
Is it permissible for a woman to pray publicly in church?
क्या एक महिला के लिए कलीसिया में प्रार्थना करना अनुमति है कि नहीं है?
Number 2.
दूसरी बात।
Is it permissible for a woman to prophesy in the church?
क्या एक महिला के लिए नबूवत करना या भविष्यवाणी करना अनुमति है कि नहीं है?
According to the definition in chapter 14 verse 3.
14 अध्याय के तीसरे पद की परिभाषा के अनुसार।
Can she prophesy?
क्या वो भविष्यवाणी कर सकती है क्या?
If she prophesies.
अगर वो भविष्यवाणी करती तो
what conditions must she meet?
तो उसको क्या चीजों को ध्यान में रखना है?
Verse 5.
पांचवें पद में
what conditions?
कौन सी परिस्थितियां? हम जब कर लेंगे भैया अगली बार, कौन सी कैसी क्या क्या होना चाहिए वहां पे?
What does it say?
क्या कह रहे हैं वहां पे?
आत्मिक उन्नति, उपदेश और संतुलन।
क्या होना चाहिए यहाँ पे? पांचवें पद के अनुसार क्या होना चाहिए?
आत्मिक उन्नति होनी चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे चैप्टर 11 वर्स 5 राइट, 11 अध्याय के पांचवें पद के अनुसार क्या होना चाहिए अगर वो कोई प्रार्थना करे या भविष्यवाणी करे, क्या करना
चाहिए,
तो करना क्या चाहिए इसको?
Must have her head covered.
सिर ढकना चाहिए इसको वहां पे।
Yep. Now you're saying a woman can pray publicly in church.
आप कह रहे हैं कि एक महिला कलीसिया में प्रार्थना कर सकती है सबके सामने,
right?
सही कह रहे हैं आप?
But you're saying a woman cannot prophesy publicly in church.
आप कह रहे हैं प्रार्थना कर सकती है लेकिन नबूवत नहीं कर सकती है।
But what does Paul say?
लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ पे पांचवें पद में?
प्रार्थना नबूवत करती है।
प्रार्थना करती है या नबूवत करती है, भविष्यवाणी करती है।
Now, if she prays or prophesies in church, she must have her head covered.
तो अगर वो प्रार्थना करे या नबूवत करे तो अपना सर जरूर ढके।
Verse 7.
सातवां पद।
Man ought not to have his head covered.
लेकिन पुरुष के लिए अपना सर ढकना जरूरी नहीं है।
Why?
क्यों?
For he is the image and glory of God.
क्योंकि परमेश्वर का प्रतिरूप और महिमा है।
The woman is the glory of man.
परंतु स्त्री तो पुरुष की महिमा है।
Now, what does that mean?
मतलब क्या उसका?
Bible says in Genesis. God created man in his own image.
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया।
Male and female he created he them.
नर और नारी करके उसने अपने स्वरूप में बनाया।
Man as a person is male and female.
और मनुष्य जो है एक व्यक्ति होने के नाते नर और नारी करके पाया जाता है।
Is a woman created in the image of God?
क्या एक महिला परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई कि नहीं बनाई गई?
She just created in the image of man.
कि वो केवल आदमी के स्वरूप में बनाई गई है? आदमी के स्वरूप में बनाई गई, परमेश्वर स्वरूप में नहीं बनाई गई औरत। तो खाली आदमी को परमेश्वर स्वरूप में बनाया गया, औरतों को परमेश्वर स्वरूप में नहीं बनाया गया। बाइबल में ऐसी कौन सी बाइबल पढ़ते हैं आप?
दोनों को ही बनाया गया।
हाँ जी,
सर्टनली मोस्ट वुमेन आर prettier than men.
ये बात सच है कि ज्यादातर महिलाएं आदमियों से दिखने में ज्यादा सुंदर होती हैं, अच्छी होती हैं। अब नहीं मुस्कुरा रहे आप लोग।
What does Paul mean here?
पौलुस का मतलब क्या है यहाँ पे?
He says this.
ये कह रहा है पौलुस।
When a man prays or prophesies, he should not have his head covered.
जब एक आदमी प्रार्थना करे या नबूवत करे तो उसे अपने सर ढकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी महिमा में बनाया गया है। लेकिन जब एक औरत प्रार्थना करे या भविष्यवाणी करे तो उसका सर ढका होना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य की महिमा है। उसको कहने का क्या मतलब क्या हो गया? क्या औरतें आदमियों के बराबर हैं कि नहीं है? क्या औरतें आदमी बराबर हैं कि नहीं है?
Why does Paul say women ought to have their head covered?
तो फिर क्यों पौलुस कह रहा है कि औरतों को अपना सर ढकाना चाहिए?
Verse 10.
दसवां पद।
What does he say?
क्या कह रहे हैं?
Woman also have a symbol of authority over her head because of the angel.
स्वर्गदूतों के कारण स्त्री के लिए उचित है कि अधिकार के चिन्ह को अपने सर पर रखें.
See, he argues from two main points.
उसके दो मुख्य कारण यहाँ बताता है.
Number one,
पहली बात,
from creation.
वो सृष्टि से करता है.
Man didn't originate from woman, but woman was taken out of man.
आदमी स्त्री से नहीं लिखा है, लेकिन स्त्री आदमी से निकली है.
And number two, because of the angel.
और दूसरी बात स्वर्गदूतों के कारण.
What did he mean by that?
मतलब क्या उसका?
Did he mean the angels were watching?
क्या वो कह रहा है स्वर्गदूत लोग देख रहे हैं?
Did he mean the angels are ranked by way of position and authority?
क्या वो ये कह रहा है कि स्वर्गदूतों को भी अधिकार के अनुसार से उनका स्थिति बताई जाती है, कहाँ पे बैठते हैं वो अधिकार में?
What does he mean because of the angels?
दस पद का मतलब क्या हुआ स्वर्गदूतों के कारण?
If you're going to properly interpret and apply this passage to the ladies in your church, you must understand some of these basic questions.
अगर आप जा करके इसको अपनी महिलाओं के जीवन में लागू करेंगे सही तरीके से, तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा भाई.
So here's what I want you to do.
तो मैं चाहता हूँ कि आप ये करें.
I want you to return this afternoon.
मैं चाहता हूँ कि आप इस दोपहर में वापस जाएं.
I want you to give me a clear answer to this question.
तो मैं चाहता हूँ कि आप एक स्पष्ट उत्तर दें इस प्रश्न का.
And I want you to give me a clear reason as to why you answer the question.
और मैं चाहता हूँ कि आप हमको उत्तर दें कि क्या कारण है इस उत्तर का.
Paul says that the woman originated from the man.
पॉलस कह रहा है कि महिलाएं पुरुषों से निकली हैं.
She is the glory of the man.
वो पुरुष की महिमा है.
And because of God's creation,
परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते,
because of the watching angel,
क्योंकि स्वर्गदूत लोग देख रहे हैं,
woman ought to have a covering over her head to symbolize her submission to male headship.
तो महिलाओं को अपने सर में एक सर में ओढ़नी होनी चाहिए ये दिखाने के लिए कि वे पुरुषों के अधीनता को स्वीकार कर रही हैं.
So tell me, should she in every generation, in every church, in every place be wearing a head covering?
क्या स्त्रियों को हर एक स्थिति में हर एक जगह पर अपने सरों को ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए?
Second question.
दूसरा प्रश्न.
Look at verse 14.
14 पद.
Does not even nature itself teach you that if a man has long hair, it is a dishonor to him?
क्या प्रकृति से नहीं सिखाती यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए लज्जाजनक है?
But if a woman, verse 15, has long hair, it is a glory to her.
और ये भी कि स्त्री के लंबे बाल उसकी शोभा है.
Her hair is given to her as a covering.
और क्योंकि उसके बाल ओढ़ने के लिए दिए गए हैं.
So here's the question.
प्रश्न ये है.
Is wearing a head covering a timeless principle for all women everywhere?
क्या सर को ढकना हर महिलाओं के लिए हर समय समय से ना बंधा हुआ सिद्धांत है?
Or was it a culturally conditioned practice at that time?
या फिर संस्कृति के अनुसार निर्धारित वहाँ के समय के अनुसार के संस्कृति थी?
Now her longer hair is an expression of submission to authority.
और अब लंबे बाल उसके अधिकार उसके ऊपर अधिकार को दिखाने का प्रदर्शन करने का चिन्ह है.
Another question,
एक और प्रश्न.
Men have long hair.
क्या आदमियों के लंबे बाल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए?
For example,
उदाहरण तौर पे.
If there's a man that is a Sikh,
और अगर कोई व्यक्ति है जो कि सिख व्यक्ति है और वो सिख आदमी मसीह बन जाता है, अब वो बपतिस्मा लेना चाहता है लेकिन वो तो जूड़ा पहनता है और बाल नहीं काटता अपने, और फिर क्या आप उनसे कहेंगे नहीं इससे पहले तुम्हें बपतिस्मा हो तुमको उन्हें बाल काटने पड़ेंगे, हाँ बाल हटाने पड़ेंगे, पगड़ी हटाओ बाल काटाओ? ध्यान सुनिए साथियों, ये व्यवहारिक प्रश्न है वास्तविक जीवन में.
You need to be able from the word of God to answer these questions.
परमेश्वर के वचन में से आपको उत्तर देना आना चाहिए.
My purpose is not to give you every answer.
मेरा उद्देश्य ये नहीं कि हम हर एक चीज का आपको उत्तर दे देंगे यहाँ पे.
My purpose is to give you some tools so that this is a conference on interpretation. I just realized that.
मेरा उद्देश्य कि हम आपको कुछ उपकरण दें व्याख्या करने के.
So when I look at this sign, I realize now I'm not supposed to give you the answers. I'm supposed to tell you how to use the tools to get the answer yourself.
मैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे आपको उत्तर नहीं देना है इन प्रश्नों का, लेकिन मुझे आपको सिर्फ ये सिखाना है, आपको उपकरण देने, यंत्र देने कि कैसे आप इन सिद्धांतों को लागू करेंगे.
So now that we have this sign and I understand the conference, I'll not be giving any more answers.
और अब मुझे पता चला है कि ये कॉन्फ्रेंस वास्तव में किस विषय पे हो रही थी. अब हम आपको उत्तर नहीं देंगे. अभी तक मुझे नहीं मालूम था कॉन्फ्रेंस किस विषय पे है. ये देखकर क्या समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे.
So when we come back after lunch, I want you to give the answer.
और भोजन के बाद हम वापस आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप हमको बताएं.
I'm going to ask five of you to stand up and tell me your conviction and explain it from the scriptures.
तो भोजन के बाद मैं चाहता हूँ पांच लोग आप लोग आए और हमको बताएं कि क्या उत्तर है, क्या होना चाहिए इसका. ठीक है. एक और प्रश्न मेरे पास आपके, क्योंकि हम औरतों के बारे में बात कर रहे हैं.
वेरी क्विकली,
जल्दी से.
We're trying to apply principles of interpretation.
हम लोग यहाँ पे व्याख्या के सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका चेहरा मैं छिपाऊं.
Paul says in chapter 5 verse 14.
Paul says that 5 verse 14.
I want the younger ones to get married, bear children, keep house, and give the enemy no occasion to reproach. Is it the same witness?
Yes. Yeah. पहले से मुझे 5 अध्याय के 14 पद में कहता है, मैं चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें, संतान उत्पन्न करें, घर की देखभाल करें और शत्रु को निंदा का अवसर ना दें.
Now in the original Greek, it doesn't have the word widows.
और जो यूनानी भाषा है वहाँ पे विधवा शब्द नहीं है.
And some people say this.
कुछ लोग ये कहते हैं.
It's God's will for all young women to be married.
परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक महिलाएं शादी करें और बच्चे हों और घर का देखभाल करें.
That gives the enemy no occasion for reproach.
और उससे शत्रु को कोई अवसर नहीं मिलता है निंदा करने का.
How do you interpret this passage?
आप कैसे इस स्थल का अनुवाद करेंगे?
What is the context?
संदर्भ क्या है?
What is he talking about?
किसके बारे में बात कर रहे हैं?
Chapter 5,
पांचवा अध्याय.
He's talking about widows.
वो विधवाओं के बारे में बात कर रहे हैं.
Older widows,
बूढ़ी विधवाएं.
And younger widows,
और जवान विधवाएं.
And what is the church's responsibility to older widows?
और बूढ़ी विधवाओं के प्रति कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है?
If she's a true widow and has no family and over 60, the church is responsible to care for her.
अगर कोई वास्तव में विधवा है, 60 साल के ऊपर है, उसके पास परिवार नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, तो कलीसिया की जिम्मेदारी कि उसकी देखभाल करे.
Now, what's the context of verse 14?
14 पद का संदर्भ क्या है?
Look at verse 11.
11 पद देखिए.
He said, refuse to put younger widows on the list.
वो कहता है कि जवान विधवाओं को सूची में मत डालो.
And here he actually mentions the word widow.
और यहाँ पे विधवाओं शब्द का इस्तेमाल करता है. देखिए,
what is their problem?
उनकी समस्या क्या है?
They begin to feel sensual desires regarding to Christ and they want to get married.
और वो मसीह से बढ़ करके देह की इच्छाओं को महत्व देने लगते हैं, विवाह करना चाहते हैं.
Now, is anything wrong with a younger widow wanting to get married?
क्या कोई गलत बात है इसमें कि कोई जवान विधवा शादी करना मांगती है?
Can a younger widow get married?
क्या एक जवान विधवा शादी कर सकती कि नहीं कर सकती?
And what does he mean?
तो कहने का मतलब क्या है? क्या कह रहा है?
He said they want to get married and they incur verse 12 condemnation.
और यहाँ पे लिखा है कि ये जवान विधवाएं शादी करना मांगती हैं और इसलिए इन लोग दोषी ठहरती हैं. 12 पद में.
Why do they incur condemnation?
तो जो शादी करना मांगती हैं तो दोषी कैसे ठहरती हैं?
Look at the rest of the verse.
उसके बाद के पद देखिए.
Because they have set aside their previous pledge or faith or commitment.
क्योंकि उन्होंने अपना पहला विश्वास प्रतिज्ञा का परित्याग किया है.
Now what does this mean?
मतलब क्या है इसका?
Apparently, some young women who lost their husband.
ऐसा प्रतीत होता है कुछ ऐसी विधवाएं हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिया है.
And they made a pledge and a commitment to the Lord that they would not be remarried, they would remain single to serve the Lord.
उन लोगों ने ये प्रतिज्ञा की थी लोगों के सामने कि अब वो दोबारा विवाह नहीं करेंगी, लेकिन अकेले रह करके प्रभु की सेवा करेंगी. ये प्रतिज्ञा की थी उन्होंने पहले.
So Paul is talking about young widows who made a previous commitment no longer to be married but to be committed to serving the Lord.
तो पौलुस उन विधवाओं के बारे में बात करा विशेष तौर से जिन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा की थी वो विवाह नहीं करेंगी और अकेले रह करके प्रभु की सेवा करेंगे, उन लोगों की बात करें।
But he said they begin to feel sensual desires and emotional desires to be married.
लेकिन वो कह रहा है फिर लेकिन यद्यपि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी लेकिन अब वे लोग देह की इच्छा और भावनात्मक इच्छाओं को महसूस करते हुए अब अपने प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं।
And they give up their previous vow, their previous pledge or commitment.
और पहला जो विश्वास प्रतिज्ञा उन्होंने की थी प्रभु की सेवा करने की उसको छोड़ना चाहते हैं वो लोग।
What does Paul say about these young widows?
तो ऐसी महिलाओं के बारे में पॉलिस क्या कहता है?
He said, if they begin to feel this way, it's better for them, and I desire them to go ahead and remarry, get married, bear children, keep house.
और पॉलिस कह रहा है कि अगर इस तरह की भावनाएं इन महिलाओं के अंदर उत्पन्न हो रही तो बेहतर ये होगा कि ये लोग शादी कर लें, घर बसाएं अपना।
You understand what he's saying?
अब आप समझ रहे क्या कह रहे हैं पॉलिस यहाँ पर, किसके बारे में बात कर रहे
हैं?
बहुत साधारण अनुवाद उसके संदर्भ में। वो दो तरह की विधवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, बूढ़ी विधवाएं,
यंग विडोज,
जवान विधवाएं,
widows that have no family and have no means of support.
बूढ़ी विधवाएं जिनके पास कोई घर नहीं है, कोई साधन नहीं है उनके पास अपने आप की सहायता करने का.
Young widows who had pledged that they would no longer be married, remain single in order to serve the Lord.
और जवान विधवाएं जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे अकेले रहेंगी और प्रभु की सेवा करेंगी.
But after a while they get lonely.
लेकिन कुछ समय के बाद वो अकेलापन महसूस करने लगे.
And physical desire.
उनके भावनात्मक और शारीरिक इच्छाएं भी.
And they forget their previous vow.
और वो भूल अपने पहले की प्रतिज्ञा को.
Paul said, if that's the case, rather than them falling into sin, I would have them go ahead and remarry.
और पौलुस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो बजाय इसके कि वे महिलाएं पाप में गिर जाएं, वे बेहतर होगा कि वे जाके शादी कर लें.
You understand what we're saying?
अब आप समझ रहे हम लोग क्या कह रहे हैं?
That's a simple interpretation in light of its context.
बहुत ही साधारण अनुवाद है उसके संदर्भ के प्रकाश में.
A lot of preachers take the verse out of context.
लेकिन बहुत सारे प्रचारक लोग उस पद को संदर्भ से बाहर निकाले.
Paul doesn't say widows.
और वो लोग कहते हैं कि पौलुस जो है वहाँ पे विधवाओं की बात नहीं कर रहा है.
Because God's will for every young woman is that they be married.
और परमेश्वर की इच्छा ये कि हर एक महिला की शादी होनी चाहिए.
Now let me ask you a question.
मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
What is a woman's ultimate purpose?
एक किसी भी महिला का असली अंतिम उद्देश्य क्या है जीवन का?
Is it to be a wife and a mother?
क्या एक किसी भी महिला का अंतिम आखिरी उद्देश्य है कि वो माँ बने या पति पत्नी बने?
What is a woman's ultimate highest purpose?
लेकिन एक महिला का सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उद्देश्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनसा क्या है, क्या होना चाहिए?
To serve and glorify God.
परमेश्वर की महिमा करना और परमेश्वर की सेवा करना.
And for most women,
और बहुत सारी महिलाओं के लिए
major part of their life,
उनके जीवन के अधिकांश जीवन के खंड में हिस्से में
they get married,
उनकी शादी होगी
and they have children,
उनके बच्चे होंगे
and in that context,
और उस संदर्भ में
they can serve and glorify God.
अब वो परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं.
But if we tell young women, you must be married.
लेकिन अगर हम जवान बहनों सारे बच्चों से कहेंगे तुमको शादी होनी चाहिए.
Serve a man.
तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है किसी आदमी की तुम सेवा करो.
Purpose in life is to be a wife.
तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कि तुम पत्नी बनो.
Your purpose in life is to have children.
तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कि तुम बच्चे पैदा करो.
And if you don't get married,
अगर तुम शादी नहीं करोगे,
and you don't have children,
तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे,
you're not fulfilling God's purpose for your life.
तो तुम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन के लिए पूरा नहीं कर
रहे. So if you're still single,
और इसलिए अगर तुम अभी अकेले हो,
or you are a widow,
और या तुम विधवा हो,
you cannot fulfill God's purpose.
तो तुम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते.
But of course, that's not right.
तो वो तो बात सही नहीं, हम जानते हैं.
There's a single woman,
अगर कोई अकेली औरत है,
God doesn't lead her to marry,
और परमेश्वर, God doesn't need her to command,
doesn't lead her,
और परमेश्वर उसको अगुवाई नहीं करता शादी करने के.
Paul says in 1 Corinthians 7,
और पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में,
that if she remains unmarried, I consider that is the better state.
और पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों 7वें अध्याय के अनुसार अगर कोई महिला है जो शादी नहीं करना मांगती है वो अच्छी अवस्था में है. पौलुस कहता है क्यों, क्यों अच्छी अवस्था में?
Is concerned about the things of the world, how she may please her husband and care for her family.
क्योंकि जिसका विवाह हो गया उसको इस बात की चिंता रहती है कैसे अपने घर की देखभाल करे और अपने पति को कैसे प्रसन्न करे, उसके मुख्य उद्देश्य हो जाता जीवन का.
The one that is unmarried is concerned about the things of the Lord, how they may please the Lord.
लेकिन जो गैर विवाहित है महिला वो इस बात से वास्ता रखती है कि कैसे प्रभु को आराधना करे, प्रभु की प्रशंसा करे.
But listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
For most women,
अधिकांश महिलाओं के लिए,
for a period of time and
in their life,
उनके जीवन के एक खंड के लिए, हिस्से के लिए, एक समय के लिए वो पत्नियां होंगी और वो अधिकांश लोग माँ भी होंगी. ये उनके जीवन के लिए कुछ समय के लिए एक कार्य है, जिम्मेदारी है.
But their ultimate purpose is not to be a wife and a mother.
लेकिन उनका अंतिम आखिर उद्देश्य ये नहीं कि वो माँ बने और बच्चों को पैदा करें.
Their ultimate purpose is to serve and be glorified by God.
लेकिन उनका अंतिम सबसे उत्तम आखिरी उद्देश्य ये है कि परमेश्वर को महिमा करें, उसकी सेवा करें.
Single woman serving glorify God.
क्या एक अकेली महिला परमेश्वर को की आराधना कर सकती है और सेवा कर सकती है कि नहीं कर सकती है?
Can a widow serving glorify God?
क्या एक विधवा परमेश्वर की आराधना कर सकती है, उसकी सेवा कर सकती है कि नहीं कर सकती है?
Does a woman have to be married to fulfill God's purpose for her life?
क्या एक महिला को शादी करना जरूरी है परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करने के लिए?
Does a widow have to remarry in order to fulfill God's purpose for her life?
क्या एक विधवा को शादी करना जरूरी है परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से करने के लिए?
Let me say a word to the single ladies here.
और मैं जो अकेली जवान महिलाएं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ.
God's calling for your life.
परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के लिए.
To know him,
उसको जानना है,
love him,
उसे प्रेम करना है,
and to glorify him,
और उसकी महिमा करना है.
And you don't need a man to do that.
और आपको एक आदमी की जरूरत नहीं है ऐसा करने के लिए. और आपको बच्चों की आवश्यकता नहीं है ऐसा करने. आपका जीवन संपूर्ण है मसीह में.
God will lead most of you to marriage.
आप में से अधिकांश लोगों को प्रभु शादी करने के लिए लेके जाएगा.
Maybe he will lead most of you to have children.
हो सकता है प्रभु आप में से अधिकांश लोगों को बच्चे भी दे.
But there's a lot of preaching in America.
लेकिन बहुत सारे प्रचार आजकल अमेरिका में है.
To young women.
जवान महिलाओं के लिए.
You got to get married.
आपको शादी करना ही करना चाहिए.
If you're not married,
अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है,
you can't fulfill God's purpose.
तो तुम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते.
If you don't have children,
अगर तुम्हारे बच्चे नहीं है,
you can't fulfill God's purpose.
तो तुम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हो.
Single man.
और तुम जवान भाई लोग जब अधिकांश समय परमेश्वर आपको विवाह के लिए लेके जाएगा, विशेष तौर से कुछ संस्कृतियों में, अफ्रीका में, चीन देश में,
and often in India,
और अधिकांश लोग भारत में.
man is not married,
अगर शादी नहीं हुई इसकी,
he's not considered complete,
उसको संपूर्ण नहीं माना जाता,
considered mature,
उसको परिपक्व नहीं माना जाता.
people will not listen to him.
आप लोग उसे सुनेंगे नहीं.
Paul said one of the requirements of church elders.
और पौलुस ने कहा कि कलीसिया के अगो की एक योग्यता ये है,
he must be the husband of one wife.
उसे एक पत्नी का पति होना चाहिए.
Now you tell me what that verse means.
आप हमको बताइए इस पद का मतलब क्या हुआ.
Does that mean he can only be married once?
क्या उसका ये मतलब है कि वो एक ही बार केवल शादी कर सकता है?
Does that mean he cannot have two wives at one time?
क्या इसका ये मतलब है कि एक ही बार में कई पत्नियां नहीं हो सकती उसके पास?
Does it mean the woman to whom he is presently married is his whole heart and whole commitment and whole life?
या इसका ये मतलब है कि जिस पत्नी से, जिस विवाह से, जिस औरत से उसकी शादी है इस समय, उसके प्रति वो समर्पित है कि नहीं है पूरी तरह?
A man is a non-Christian.
अगर कोई व्यक्ति गैर विश्वासी है, वो 20 साल का है,
he married a girl.
और एक लड़की शादी करता है,
because she got pregnant.
क्योंकि वो उसने गर्भवती हो गई थी,
he has a baby.
उसका एक बच्चा होता है,
he married her.
उससे उसकी शादी हो गई.
5 years later.
साल के बाद उसको छोड़ देता है. 5 साल के बाद उसको नया,
5 years after that,
वो मसीह बन जाता है. और 5 साल के बाद अब 35 or 40 साल का है.
He's got the gift of preaching.
अब वो प्रचार का वरदान उसके पास.
He wants to be an elder in the church.
वो कलीसिया में अगुआ बनना चाहता है.
Is it permissible for him to be an elder in the church?
क्या वो कलीसिया में अगुआ बन सकता है कि नहीं बन सकता है?
No.
फिर प्रश्न को सुनिए ध्यान से. जब वो गैर विश्वासी था तब वो पाप में गिरा, तब उसने शादी की. जब वो गैर विश्वासी था तब उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया. अब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद की बात है. मसीह अब बना, मसीह बनने के बाद, प्रभु को जानने के बाद की बात हो रही है. अब बात हो रही है. अब क्या वो विश्वास, क्या वो अगुआ बन सकता? नहीं बन सकता. अरे वो औरत चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई. वो कहाँ ढूंढ के लाएगा उसको? वो भाग गई. वो कहाँ ढूंढेगा? वो पंजाब में रहता, वो केरला में रहती है.
Has anybody in this room committed adultery before they got married, or committed adultery before they became a Christian?
You want them to tell you?
I want to ask. Answer in your own heart.
अच्छा, एक प्रश्न हम पूछेंगे.
अपने दिल में दीजिएगा, सबके सामने में बताइएगा, आप इस कमरे में क्या कोई ऐसा जन है जिसने विवाह से पहले व्यभिचार किया है? उत्तर मत दीजिएगा।
Anybody in this room commit fornication before they became a Christian?
क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मसीह बनने से पहले व्यभिचार किया है?
Then you became a Christian.
और फिर उसके बाद मसीह बन गया।
Then you wanted to preach.
और फिर उसके बाद आपने प्रचार करना चाहा।
Then you wanted to serve in the church.
फिर आप कलीसिया में अगुवाई करना चाहते थे।
Could you be a leader in the church?
क्या आप कलीसिया में भी बन सकते हैं?
If a man, anybody in this room was a drunkard before they became a Christian?
क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है मसीह बनने से पहले वो दारू पीता था, नशेड़ी था?
God saved you.
प्रभु ने आपको बचा लिया।
You're no longer a drunkard.
और अब आप शराबी नहीं। प्रभु ने आपको वरदान दिया प्रचार करने का। आप कलीसिया में प्रचारक बनना चाहते हैं? क्या आप बन सकते हैं प्रचारक कलीसिया में? आप बन सकते कि नहीं बन सकते? अपनी बारी आए तो बन सकते हैं। अच्छा, when it comes to you, then you can be.
Here's a man that was divorced before he became a Christian.
हम यहाँ पे बात करें एक ऐसे जवान भाई की जो प्रभु को जानने से पहले उसका विवाह टूट गया, तलाक हो गया।
15 years later.
15 साल के बाद।
Happily married to a Christian woman.
लेकिन अब एक मसीह महिला से उसका बढ़िया विवाह हो गया।
He's got a wonderful testimony.
और उसका बढ़िया, बहुत ही सुंदर गवाही भी है उसकी।
He has an obvious gift.
उसके पास स्पष्ट वरदान भी प्रभु की। और वो कलीसिया में अगुवाई करना चाहता है।
चले नो,
तो आप कहेंगे नहीं। बैठ जाओ। क्या ये यहाँ पे सही कही कह रहे हैं? नियमितता दिखाई दे रही है यहाँ पे हमारे विचारधारा में?
This is something you need to think about.
इसको आपको सोचना है।
When Paul wrote this word down,
जो पौलुस ने शब्द को लिखा है,
the husband of one wife,
एक पत्नी का पति,
What did he mean?
क्या मतलब है उसका?
What was he thinking in his mind?
क्या सोच रहा था अपने मस्तिष्क में?
To properly interpret the word of God, we have to get inside Paul's mind.
सही तरीके से व्याख्या करने के लिए हमें पौलुस के मस्तिष्क में प्रवेश करना पड़ेगा।
So he meant either one of several things.
हो सकता है कई बातें उसके दिमाग में चल रही हैं।
A man must never ever be divorced.
कभी भी किसी भी हालत में एक व्यक्ति का तलाक नहीं होना चाहिए, तो वो ये सोच रहा होगा चाहे वो मसीह नहीं था तब भी की बात है।
Now, Paul, before he was a Christian, was a murderer.
और आपको मालूम ना पौलुस मसीह बनने से पहले वो तो हत्यारा था कि नहीं था? हत्या की थी कि नहीं की थी उसने?
Would you let him be an elder in your church?
क्या आप पौलुस को अपनी कलीसिया में अगुवा बनने देंगे? कुछ लोग कहेंगे नहीं बनने देंगे।
बनने के लिए क्षमा पाए तो उद्धार पाए हो, कल के अंदर भी कोई फर्क
नहीं। You need to think about that.
उसके लिए क्या करना है? यदि कोई किसी में
If anyone is in Christ, he is a new creation.
That's true. Old things pass away.
पुरानी बातें बीत गईं।
Become new.
So, नई बातें अब सब नई बन गईं।
What did Paul meant this? In his heart and in his life, one woman has his affection, his commitment, his eye, and his body. He's a one woman man.
और या ये हो सकता है पौलुस जब उस पद की बात कर रहा हो सकता है पौलुस ये कह रहा है उस समय वो व्यक्ति एक ही स्त्री के प्रति समर्पित है और वो स्त्री का उसका भावनाएं और उसका शरीर और उसका मन पूरी तरह से एक स्त्री के प्रति समर्पित है उस समय।
But you're a pastor in the church.
लेकिन आप तो कलीसिया के अगुए हैं।
And you wake up in the morning.
आप सुबह उठे।
You've been married 35 years.
आप 35 साल से आपकी शादी हो गई। मैंने पहले बताया आपको।
You look over at your wife sleeping.
आप अपनी पत्नी को सोते देखते हैं।
And your heart,
और आपका हृदय,
and your mind,
और आपका मन,
and your commitment,
और आपका समर्पण,
is to another woman,
एक किसी दूसरी औरत की ओर चला जाता
है, in your heart,
आपके मन में,
you're no longer a one woman man,
और अब आपने हृदय में अब एक औरत के प्रति समर्पित व्यक्ति नहीं बचे।
You didn't sleep with another woman,
आप उस औरत से अभी सोए भी नहीं हैं।
Jesus said, when a man looks on a woman and lusts after her, he's committed adultery already in his heart.
लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुमने किसी स्त्री की ओर बुरी निगाह से देखी है तो तुमने व्यभिचार अपने हृदय में कर दिया।
If your eye,
अगर आपकी आंखें,
your mind,
आपका मन,
your heart,
आपका हृदय,
and your body,
और आपका शरीर,
is attached to another woman,
किसी दूसरी औरत की ओर लगा हुआ है,
just your mind and your heart,
sorry,
just your mind and your heart,
या फिर सिर्फ आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में,
and you are emotionally divorced from your wife,
और भावनात्मक तौर से आप अपनी पत्नी से दूर हट गए हैं,
you no longer sleep with your wife,
और आप अपनी पत्नी के साथ सोते भी नहीं हैं,
you no longer love your wife,
अब अपनी पत्नी से प्यार भी नहीं करते हैं,
still qualified to be an elder,
क्या आप अब कलीसिया के अगुवे होने के लायक हैं?
You didn't divorce her.
आपने अभी छोड़ा नहीं उसको, आपने तलाक नहीं दिया उसका अभी, लेकिन
she's still your wife.
वो देखा जाए कानून तो अभी भी आपकी पत्नी है वो एक तरह से. ध्यान से नहीं सुना. लोग बाहर की ओर देखते हैं लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है.
And your eye,
आपकी आंखें,
your heart,
आपका हृदय,
your mind,
आपका मन,
and your body,
और आपका शरीर.
Paul says this.
Paul उसे कहता है.
One woman,
एक ही औरत,
for all your life,
पूरे जीवन पर.
We know he meant that for sure.
हमको मालूम है कि वो ये बात पक्की तरह से कह रहा है.
You need to determine whether he meant anything else.
आपको देखना पड़ेगा कि और वो क्या कह रहा है, क्या कह सकता है.
An elder in the church,
अगर कोई व्यक्ति कलीसिया में अगुआ है,
commits adultery with a woman in the church,
और कलीसिया के भीतर किसी दूसरी महिला के साथ व्यभिचार करता है, वो पश्चाताप करता है.
Can he be restored to fellowship in the church?
अगर कोई व्यक्ति, we're talking about an elder,
fellowship in the church,
अभी talking about an elder, just
in the church.
कलीसिया में कोई व्यक्ति है, उसने कलीसिया में किसी दूसरी महिला के साथ व्यभिचार किया और फिर उसके बाद उसने पश्चाताप किया, क्या वो व्यक्ति को हम कलीसिया में संगति में पुनः स्थापना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. ने उसे पश्चाताप किया, पश्चाताप कर लिया, गलती किया, व्यभिचार किया, फिर उसके बाद पश्चाताप करा, तो क्या उसको हम कलीसिया में पुनः जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं. जोड़ सकते हैं. व्यभिचार किया उसने, व्यभिचार किया और फिर उसे पश्चाताप के उसे जोड़ लेंगे आप चर्च में, संगति में आने देंगे उसको. तो चर्च में नहीं आ सकते, उसको भगा देंगे. आवे लेकिन हमसे मतलब ना रखे. कलीसिया में पाप था.
मैन वॉज स्लीपिंग विद हिज स्टेप मदर.
एक आदमी, बाद में देखिएगा, बाद में देखिएगा, पहला कुरिन्थियों के पांचवें अध्याय में लिखा है एक आदमी है अपनी सौतेली माँ के साथ सो रहा था.
And the Corinthian church would not discipline him.
और कुरिन्थियों की कलीसिया उसको अनुशासित नहीं कर रही थी.
Paul said, I've already delivered such a one over to Satan for the destruction of his flesh.
और पौलुस कहता, मैंने ऐसे व्यक्ति को जो पहले ही शैतान के हाथ में कर दिया उनके शरीर के नाश होने के लिए, ताकि उसके प्राण बचाए जाए. बाद में देखिए पहले कुरिन्थियों पांचवें अध्याय.
You should rebuke such a one.
पौलुस कह रहा है ऐसे व्यक्ति को आपको डांटना चाहिए.
Now what happened in 2 Corinthians?
और दूसरे कुरिन्थियों में क्या हुआ?
Apparently the church did rebuke him.
और शायद कलीसिया ने उसको डांटा.
He repented.
उसने पश्चाताप भी किया शायद.
What did Paul tell the church to do?
और फिर पौलुस क्या कह रहा है कलीसिया को करने के लिए? दूसरे ग्रंथ में पॉलिस क्या कह रहा है कलीसिया को करने की? क्या कह रहे हैं? बाहर भगा दो उसको. क्या कह रहा है पॉलिस कलीसिया को?
Restore such a one.
उसको वापस ले आओ, उसको पुनः स्थापित करो कलीसिया में.
Now as a pastor, is an elder a member of the church?
कलीसिया के
is the elder a member of the church?
कलीसिया में जो अगुआ होता है, जो पासबान होता है, क्या वो कलीसिया का सदस्य है कि नहीं है? जो पास्टर लोग हैं तो चर्च के सदस्य हैं कि नहीं है? अगर एक पास्टर व्यभिचार करता है,
you rebuke him,
आप उसको
according to the scripture,
वचन के अनुसार दंडित करेंगे.
He repents,
और वो पश्चाताप करता है.
Can he be brought back into the fellowship of the church?
क्या पास्टर ने अगर पाप किया और उसने आपने उसको डांटा, दंडित किया, उसे पश्चाताप किया, क्या उसके बाद आप उसको कलीसिया में पुनः स्थापित कर सकते कि नहीं कर सकते? संगति में, संगति में पास्टर ने किया अगर.
Second question.
और दूसरा प्रश्न,
can he be restored to the office of elder and preach in the church?
क्या वो पास्टर को, ठीक है, तो संगति में क्या उसको आप कलीसिया में प्रचार करने के लिए पुनः स्थापित कर सकते हैं? तो उसे पश्चाताप कर ले भैया, पश्चाताप करने के बाद भी आपने उसको पुनः साबित करेंगे तो प्रचार नहीं कर सकते वो दोबारा.
You better think about these things.
तो सोचिए आप इन बातों के बारे में.
Because a lot of pastors fall into sin.
क्योंकि बहुत सारे प्रचारक लोग गलती में पड़ जाते हैं.
And if in your mind,
और अगर आपने मस्तिष्क में,
in your heart,
अपने हृदय में,
or in your eyes,
और आपकी आंखों में,
you're looking or thinking or loving another woman.
अगर आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं दूसरी औरत को.
No longer a one-woman man.
तो फिर अब आप एक ही स्त्री के पति नहीं बन जाएंगे.
And you need to repent.
और आपको पश्चाताप करने की जरूरत है. और आपको अभी पश्चाताप करने की जरूरत है.
If you're looking at something you shouldn't look at.
अगर आप कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जिसको आपको नहीं देखना चाहिए.
If you're thinking about something you shouldn't think about.
अगर आप कोई ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो आपको सोचना नहीं चाहिए.
If your heart is attached to someone other than your wife.
अगर आपका हृदय किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जो आपकी पत्नी नहीं है उसके अलावा किसी और से जुड़ा हुआ है.
See,
परमेश्वर देखता है.
God knows.
और परमेश्वर जानता है.
And you need to repent.
और आपको पश्चाताप करने की जरूरत है. परमेश्वर ने कलीसिया के अगुओं के लिए स्तर को काफी ऊंचा रखा है.
And you young men,
और आप जवान भाई लोग,
you're looking at pornography,
अगर आप अश्लील चीजों को देख रहे हैं,
and it allowing your mind to constantly run away with bad thoughts,
और अगर आपने मस्तिष्क को बार बार बुरे विचारों से दौड़ने देते हैं,
or you're chronically and continually addicted or controlled by masturbation,
और अगर आप निरंतर लगातार जो फंसे हुए हैं हस्त मैथुन करने में,
then you need to repent,
तो आपको पश्चाताप करना है.
You need to pray for help,
और आपको सहायता के लिए प्रार्थना करनी है.
Watch your soul,
और आपको पुरुषों से कहना है कि आपके प्राणों को देखे. और आपको दूसरे भाइयों के प्रति जवाबदेही होना है.
Why?
क्यों?
Because if you want to enter into the office of an overseer or an elder,
क्योंकि अगर आप कलीसिया के अध्यक्ष या कलीसिया के पासवान बनना चाहते हैं, अगुवे बनना चाहते हैं,
your life,
तो आपका जीवन,
your mind,
आपका मस्तिष्क,
your eyes,
आपकी आंखें,
and your body,
और आपका शरीर,
belong to Christ,
प्रभु का है,
and belong to your wife,
और आपकी पत्नी का है.
One woman,
एक ही औरत,
for all your life,
पूरे जीवन भर.
If there's a man in here, his mind, heart, and life is fixed on another woman.
अगर यहाँ पे कोई आदमी है जिसका दिमाग, मस्तिष्क या हृदय, आंखें किसी दूसरी औरत के ऊपर लगी हुई है.
I didn't say you were tempted.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका खाली प्रलोभन हो रहा है आपको.
Temptation to sin and falling into sin is not the same thing.
पाप का प्रलोभन होना और पाप में गिर जाना दोनों में फर्क है, भिन्नता है. परमेश्वर के पास केवल एक ही शब्द है आपके लिए, पश्चाताप करो. अभी इसी समय बात करें.